क्यों आप सोचे कि मैं पागल हूँ? अरे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ।
किसने कहा तुम पागल हो गए? मैं नहीं चाह रही थी कि अम्मी के सामने सादिक मामू का नाम लूं, जिससे वो परेशान हो जाए।
क्यों सादिक मामू, क्या हुआ?
कुछ नहीं, कल उनकी तबीयत खराब हो गई थी, बीमार हो गए। देखा नहीं जैसे उनका नाम आया कैसे तबीयत बिगड़ गई थी अम्मी की।
आफाक, कहाँ जा रही हो? आफाक, जाओ, ससान की बात गौर से सुनो। खुसरो, महताब, खुदा के वास्ते पलट जाओ। सितारा, लो ये भी चले गए। किसने ससान की बात का यकीन नहीं किया? क्या तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते थे?
कुछ नहीं किया जा सकता था जी। ससान को जो कुछ याद आया वो उसने बता दिया। उनको भी जो सुनना चाहिए था वो सुन चुके। अब उन्हें यकीन आए या नहीं वो हमारे तुम्हारे बस में नहीं है।
मुसीबत तो यह है कि सिर्फ शर्मा समझा कि वो सच कह रहा है। अब वो क्या करता है अल्लाह ही जानता है।
हाँ ठीक कहते हो।
इस किस्मत पर लानत, मेरी समझ में नहीं आता लड़के ने कहां से बातें कह दी।
तुम पर लानत हो जो मेरे अजाब का बायस बने हो।
लगी नहीं रहा कि रमजान का महीना है।
मैंने अभी पी कहां, मुझे अजान की आवाज लगी। मैं तो दो दिन पहले से रोजा रख रहा हूं।
हाँ झूठे कहीं के।
वाकई भाईजान मर गए थे?
नहीं मेरी जान।
तो फिर कैसे कह रहे थे कि नानजान की रूह को देखा है?
अरे मेरी बेटी, तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं हुई अभी। वो दो दिन बेहोश था, वो समझ रहा था कि उन्हें देखा है।
अगर देखा हो तो, अगर वाकई वो कुछ कहना चाह रहा हो तो फिर?
तो ऐसा है हाजी साहब, मुझसे टकराओगे? हाँ सरमत से मेरी पोल खोलना चाह रहे हो? लगता है जब तक इस दुनिया में बचे हो तब तक मुसीबतें चलती रहेंगी। ठीक है, मुझे भी अपना काम खूब आता है, कुछ ऐसा करूंगा कि दोनों को सुकून मिल जाए। तुमको तो बहरहाल जाना ही है, मैं भी ऐसा कुछ करूंगा कि आसानी से तुम उस दुनिया में जा सको। ऐसा करूंगा, अब ऐसा काम करता हूं कि बगैर झिलाए हुए सीधे वहां निकल जाऊं, तुम देखना। जानते हो हाजी, आज मैं तुमसे दर्द दिल करना चाहता हूं। दर्द दिल तो नहीं, शिकायत है। मैं ये कहने आया हूं, अच्छी तरह मेरा हक तुमने मुझे दे दिया। मेरी भाग दौड़ का अच्छा सिला दिया है तुमने हाजी। कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई कि ऐसा वसीयतनामा लिखो हाजी? कैसे हिम्मत हुई कि मेरा दिल इस तरह तोड़ दो हाजी? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे खुसरो की तरह हूं? बिल्कुल तुम्हीने कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे की तरह अजीज हूं।
हां तुमने भी तो बाप बेटे का हक बड़ा अदा किया।
ऐसी वसीयत लिखकर हाजी साहब तुमने दिखा दिया कि ये सब तुम्हारी सिर्फ बातें थीं, दिल की बात नहीं थी। मैं भी आज अपने दिल की बात करने आया हूं। तुम्हें पता है हाजी साहब मैंने क्यों तुम्हारी लड़की से शादी की थी? चूंकि मेरी नजरें तुम्हारी जायदाद पर थी हाजी साहब। तुम्हें पता है मेरे घर में क्यों सीमा की चलती थी और मैं बदबख्तों की तरह सर झुकाए रहता था। जो वो कहती थी सिर्फ मैं हां कहता था, जबान से मानता था, इसलिए कि मेरी नजर तुम्हारे पैसों पर थी हाजी फत्ता। तुम्हें पता है कि मैंने क्यों इतनी जिल्लत रुसवाई उठाई और अपने ससुर की कंपनी में काम शुरू कर दिया। मैंने इतनी नौकरी की, कुत्तों की तरह सुबह से रात तक दौड़ा धूपा, इसलिए कि कभी तुम्हारी फैक्ट्री का मैं भी मालिक बन जाऊं हाजी साहब। लेकिन तुमने ऐसी वसीयत की कि मुझे ना उम्मीद कर दिया हाजी। तुमने मेरी उम्मीद मायूसी में बदल दी।
अच्छा, मैंने तो फैक्ट्री के पूरे मामला तुम्हारे हवाले कर दिए थे। तुम्हारी तमा खत्म होने वाली नहीं थी।
मुझे शक है कि इस वक्त मेरी बात सुन रहे हो। वैसा ही शक है जैसे सामान की बातों पर मुझे शक है कि उसने ख्वाब में तुम्हें देखा। हमेशा आबिद और मुसलमान तुम्हारे सामने में बनता था। मैंने जब भी वजू किया, सर या पैर का मसा मैंने नहीं किया। जब भी मैंने रोजा रखा, अजान के बाद जाकर एक गिलास पानी पी लिया करता था। हाँ, तुम्हें पता है हाजी, मुझे इन सब पर शक है। उस दुनिया, रूह हो, बरज़ख हो, आलम, सब पर मुझे शक था, यानी शक है। लेकिन सासान की बातों ने आज मुझे थोड़ा डरा दिया। कहीं वाकई तुम्हारी रूह उसके पास आई ना हो और सासान से हाज सादिक से तहखाने और इस तरह की बातें की हो। कहीं तुम्हारी रूह का कोई हिस्सा वाकई जिंदा ना रह गया हो कि मेरे हक को पामाल करना चाहता हो आकर। लेकिन हाजी, ये सब हंसी की बातें हैं। मुझे पता है कि ये रूह, आलम बरज़ख, सब झूठ, सब फालतू, कुछ भी सही नहीं है, सब गलत है। लेकिन तुम्हारे बकौल शक के आलम में रोजा नहीं रखना चाहिए हाजी। तुम्हारी रूह कहाँ है हाजी? अगर ये सब सच है तो अपनी रूह मेरे पास भेजो। पता है किस लिए? क्योंकि मैं उसे उस शाहराह पर लगा देना चाहता हूं जो सीधे जाती है उस दुनिया में। क्या कहते हो तुम?
अरे जनाब, आप मरीज को छू नहीं सकते, क्या कर रहे हैं?
सिस्टर, मैं सिर्फ से बात कर रहा था। बाबा जान, आपको नहीं पता मैं उन्हें कितना चाहता हूँ।
वो तो अब जिंदा नहीं है, कुछ नहीं सुन सकते। आप तो ये बात बेहतर जानते हैं।
मुझे पता है।
और मैंने आपसे कहा था आप सिर्फ कुछ मिनट यहाँ रह सकते हैं। अब तशरीफ ले जाएं।
सिर्फ एक मिनट सिस्टर, मुझे इजाजत दे दीजिए, खुद आपसे कर लेने दीजिए। मैं वादा करता हूँ सिर्फ एक मिनट लगेगा। ये मेरे खुसरे मोहतरम, मेरे वालिद की तरह है।
तो फिर जल्दी कीजिए।
ठीक है। ये मेरा बाप कैसे हो सकता है? हाजी, ये मत सोचना कि मेरा काम खत्म हो गया है। कल रात इसी वक्त तुम्हारी नमाज की जगह खाली कर दूंगा और सब इकट्ठा करके जलाकर राख कर डालूंगा, वसीयतनामे की तरह। इसे भी बर्बाद कर दूंगा, उड़ा दूंगा। हाँ। अगर हिम्मत हो तो अपनी रूह को भेजो मेरे पास, देखें क्या बिगाड़ लेती है मेरा।
मैं जितना भी सोच रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात का क्या मतलब है कि भाई उनके लिए नमाज पढ़े।
अरे अम्मी जान, आप क्यों इतना सीरियस हो गई हैं?
वो लड़का तो बस यूं ही बकवास कर रहा है।
अम्मी जान ये ठीक है, अगर वो कह रहा है कि बाबा जान को ख्वाब में दिखा है तो हो सकता है उन दवाओं की वजह से उसे वहम हो गया हो, उस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना।
कसम खुदा के हाजी साहब तो ऐसे थे नहीं जिनकी कोई नमाज कजा हो। अब अगर मेरी बात होती तो हो सकता है जवानी में कभी कुछ एकाध नमाज वमाज छूट गई हो, लेकिन फिर भी मुझे बईद लगता है।
बाबा मैं तैयार हूँ।
अम्मी जान आप भी हमारे साथ चलिए हमारे घर, यहाँ अकेले मत रहिए।
शुक्रिया मनु चेरमिया, मैं यहीं पे ठीक हूँ,
मैं रात में यहाँ रुक जाती हूँ।
ठीक है तो कल रात सासान के डिस्चार्ज होने की खुशी में इफ्तार हमारे यहाँ कीजिएगा सब, आप और मेहता साहिबा भी जरूर आइए।
शुक्रिया मनुचेर, लेकिन पहले मुझे मेहता से बात कर लेने दो, देखे कहीं कल के लिए कोई प्रोग्राम तो नहीं रखा है।
प्रोग्राम प्रोग्राम छोड़िए, बहानेबाजी मत कीजिए, कल आना पड़ेगा।
ठीक है अम्मी चलता हूँ।
ठीक है बेटा, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। आओ बेटा हम भी चलते हैं, चल बेटा।
मेरी प्यारी बच्ची।
अम्मी जान चलता हूँ, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
आजा मेरी प्यारी बच्ची चलो।
मैं भी बहुत परेशान हूँ भैया, हाजी की एक बार भी नमाज नहीं कजा हुई है, और नमाज अदा करना तो बड़े बेटे का फर्ज है, तुमसे क्यों कह रहे हैं कि तुम नमाज पढ़ो। मेरी सुनो तो हाजी तवसुली से पूछ लो, इस बात का कोई मतलब है जरूर, शायद उन्हें इल्म हो और हमें बता दें।
ठीक है बहन जी, जबकि मैं सासान की बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन ये बात जरूर उनसे पूछूंगा।
और ये भी पूछ लेना कि जब नजरी का लड़का ठीक हो गया है तो मेरी नजर का क्या होगा।
क्या कुछ और सोचा है क्या?
मैंने नियत की है कि अगर कोई मुश्किल ना हो तो डॉक्टर की अम्मी को कल्प दिलवा दो।
ठीक है पूछता हूँ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ।
शुक्रिया भाई, मुंतजिर हूँ, राजिया को सलाम कहना।
सितारा, सितारा बेटी तुम आ गई, दौड़ कर आना बेटा, जल्दी आओ।
बाबा आपको यकीन है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे?
हाँ बेटा क्यों नहीं?
बिल्कुल ठीक हो गए?
बिल्कुल ठीक हो गया।
बाबा मुझे अभी उनसे डर लग रहा है जैसी बातें वो कर रहे थे।
असली बात तो ये है कि मैं भी डर रहा हूँ, देखा कैसी बातें कर रहा था, किसी से कुछ कह मत देना, बेइज्जती हो जाएगी हम लोग की। चलो बेटा मैं मजाक कर रहा था, अगर तबीयत ठीक नहीं हुई होती तो उसे घर आने क्यों देते, अब बिल्कुल ठीक है, आज घर पर एक पार्टी है, इफ्तारी इफ्तारी देंगे, सबको बुलाएंगे, आस पड़ोस वालों को, अम्मी जान, खुसरो मामू, मेहताब, उस औरत के बच्चे भी, उन्हें कह रहा हूँ। फटाफट आ जा बेटा।
कुर्बान जाऊं, मुझे मदद करने देते ना।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, यहाँ आओ मेरी जान, अंदर आओ मेरी जान, तुम पर कुर्बान आ जाऊं मैं, मेरी बेटी, मेरी जान।
बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा का शुक्र है सब कुछ खत्म बखैर हुआ, अब तुम भी सब कुछ भूल जाओ बेटा।
सब कुछ ऐसा मुमकिन है?
क्यों नहीं मुमकिन है, मैंने हाजी फत्ता और उनकी बात पर जो चाह रहे थे कि मार्केट तुम्हारे और मेहताब नाम करें, बहुत सोचा, देखा कि तुम ठीक कहते हो, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हाजी की ख्वाहिश पूरी ना हो सके। शैतान मुझे बहका रहा था, मेरे खुदा औज़ु बिल्लाह मिन शैतान जी, मुझे माफ कर दो, मैं भी गलती कर सकता हूँ। तुम्हें पूरा हक है बेटा कि तुम मुझसे नाराज रहो। मैं आज ही कल वो रजवी साहब के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि हाजी की ख्वाहिश थी सिर्फ एक फर्क के साथ, कि हाजी चाहते थे कि अगर तुम्हारी और मेहताब की शादी हो जाए तो वो शॉपिंग सेंटर उनके नाम करेंगे। इस तरह खुसरो और मेहताज भी समझ जाएंगे कि अगर इस मार्केट का आधा हिस्सा उनकी बेटी को मिल जाएगा तो वो भी मुखालफत नहीं करेंगे। क्यों, क्या मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, सही, बिल्कुल सही बात है मेरी। हाजी भी अपनी ख्वाहिश तक पहुंचेंगे और तुम भी।
बाबा आप समझते क्यों नहीं हैं, मैं इस तरह मेहताब से शादी नहीं करना चाहता हूं, और खुसरो मामू भी ऐसे नहीं है कि थोड़े पैसों के लिए मेहताब को मुझसे शादी करने के लिए मजबूर करें।
थोड़े पैसे? मेरी समझ में नहीं आता कि आपका कितना करोड़ों का बिजनेस है, अरबों का बिजनेस है, कि ये पैसे थोड़े पैसे हो गए आपकी नजर में। मेरे बेटा ये शॉपिंग सेंटर यूं ही अभी शुरू नहीं हुई, अभी भी 500-600 मिलियन तुमान की है, वो भी आधी कीमत इसकी है।
बाबा मैं इजाज़त नहीं दूंगा नाना जान की तरफ से ऐसी झूठ बोले। यकीन कीजिए अगर मुझे इत्तला मिले कि उन साहब को आपने रिश्वत दी हो कि ऐसी बातें करे, आप दोनों को बदनाम कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ।
मैं जा रहा हूँ उस बुढ़िया को लेके आऊँगा अपने यहाँ। खुदा के वास्ते हाजी की रूह की बातें और ये कि उन्होंने क्या कहा और क्या सुना कि ये सारी बातें मत करना।
अब मुझे भी कोई जिद नहीं कि मेरी बातों को यकीन किया जाए।
मेरे बेटे इस औरत की यूं ही हजारों परेशानियां हैं। आखिर एक तरफ उसके भाई के सादिक की परेशानी है, दूसरी तरफ शौहर हॉस्पिटल में है, इधर तुम उधर हम, मैं ही इन सब में ठीक हूं बस। अजीज मन आखिर तुम समझते क्यों नहीं, जब तुम कहते हो कि हाजी साहब सादिक साहब से बात करना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है?
मैंने कब कहा नाना जान सादिक मामू से मिलना चाहते हैं? मैंने कहा।
फिर वही बात कर रहे हो, इन बातों से वो बुढ़िया क्या समझेगी आखिर?
मानो चेर, तुम अब तक अम्मी को लेने नहीं गए?
जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ अभी, तुमने भी आजिज करके रख दिया है। मैं जा रहा हूँ उस बुढ़िया को लेने के लिए, मेरी इज्जत का ख्याल रखना जरा, तुम्हारे बालों पर कुर्बान जाऊं, अब तक कंघी से इसकी दोस्ती नहीं हो सकी।
सीमा जरा वो रोटी देना मुझे।
लीजिए।
शुक्रिया।
सासान लो ना, ये लो सासान।
अम्मी जान, मैंने सासांग डॉक्टर से बात की है, वो कह रहे थे अगर वो जल्दी ऑफिस जाएगा तो जल्दी बेहतर हो जाएगा, उतनी जल्दी इसकी तबीयत ठीक होगी।
अरे मनुष्य, ये जो हॉस्पिटल से आ गया है यही इसके लिए बहुत मुफीद है।
जी हाँ।
अम्मी जान आप क्यों नहीं ले रही हैं कुछ? हलीम बहुत अच्छी बनी है, अपनी प्लेट मुझे दीजिए।
नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा है।
ये कैसे हो सकता है कि आप कुछ भी ना खाएं?
तुम्हें पता है मैं कल से मुसलसल यही सोच रही हूँ कि हाजी साहब आखिर सादिक से क्या कहना चाहते थे। सासान बेटा, सासान बेटा, कुछ और याद नहीं आया तुम्हें कि हाजी क्या कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं याद आया?
नहीं नानी जान।
अम्मी जान, ये सब चीजें इन चोटों या बेहोशी का नतीजा भी तो हो सकती हैं। खुदा का शुक्र है कि रिपोर्ट में दिमागी चोट का कोई निशान नहीं है।
मेरे ख्याल में मेहता साहबा ठीक ठीक कह रही हैं। अम्मी जान, चाहे ख्वाब रहा हो, चाहे बेहोशी, चाहे कोमा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम सब जानते हैं कि हाजी साहब इस दुनिया में किसी के मकरूज नहीं थे।
एक ज़रूरी काम जो हाजी करना चाह रहे थे और कर नहीं पाए वो ये है कि उस शॉपिंग सेंटर को अपने बच्चों में से किसी एक के नाम कर दें जो नहीं कर सके वो।
नहीं नानी जान, वो पता चल गया है, नाना जान उसको दो लोगों के नाम करना चाह रहे थे, एक तुम महताब और एक मैं।
तुम्हें ये बातें कैसे पता? उन्होंने खुद कहा?
एक साहब आए थे फैक्ट्री में रिजवी नाम के, उसके कागजात मुझको दे गए। अलबत्ता मैं बाबा को ये बातें बता चुका हूँ, ये तो वहम नहीं है ना? क्यों
नहीं? क्यों नहीं, ठीक कह रहा है।
तो अब तक क्यों कुछ नहीं कहा?
क्या कहता, देख नहीं रहे हो किस तरह के हालात, इन हालात में आखिर क्या कहता, बाद में तो बता ही देता ना मैं।
तो बेटे इस वक्त वो पेपर तुम्हारे और मेहताब के नाम है?
नहीं, क्या बताऊँ, मेहताब के कागजात ज़रा नाकिस हैं, कम हैं, और हाँ इनके दस्तखत भी नहीं हुए हैं जो ज़रूरी हैं, उन्हें होना है।
अच्छा, तो फिर अभी वो कागजात जो हैं किसी के नाम नहीं हुए हैं?
नहीं, लेकिन कम से कम हम हाजी की ख्वाहिश को तो जानते ही हैं। अब ये हम वर्षा पे हैं, हम वर्षा पर कि हाजी की ख्वाहिश पर अमल करें या ना करें।
ज़रूर वही काम करेंगे जो हाजी चाहते थे।
बेटा चावल ले लो तो। ये क्या किया मनु चेहर?
तो मैं क्या करूँ, छींक है, खुद ही आ जाती है। माफ कीजिएगा, मैं मुझे जाकर कपड़े बदलने हैं।
छोड़ो बेटा, कपड़े बदल लेंगे।
हेलो जी, फरमाए जी। आप? वाह अमीर मियाँ, मुझे कैसे याद किया भाई? नहीं भाई, ये कैसी बात है। अच्छा अच्छा, एक्सीडेंट? कब, कहाँ? नहीं भाई, ये कैसी बातें हैं, जरूर आऊंगा दोस्ती, इसी वक्त तो काम आती है आखिर। अमीर मुरादी, तुम नहीं जानती, मेरा पुराना दोस्त है भाई।
क्या हुआ है?
मैं बस अभी पहुंचा। हाँ अमीर, नहीं मेहमान है इफ्तार पर, अपने हैं, लेकिन आता हूँ मैं, अब क्या किया जा सकता है, वहीं पर रहना, आता हूँ।
कौन था?
अमीर मुरादी था, पुराना दोस्त है, तुम नहीं जानती।
क्या उनका एक्सीडेंट हो गया है?
हाँ, वो लोग करज से लौट रहे थे, शायद एक्सीडेंट हुआ है।
इंशाल्लाह कि एक्सीडेंट में उन्हें कुछ ना हुआ हो।
नहीं अम्मी जान, शायद आ रहे थे कि गाड़ी किसी और गाड़ी से टकरा गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। उनकी गाड़ी को गैरेज लेकर गए बनवाने के लिए, मैं जाकर देखता हूँ क्या कुछ कर सकता हूँ, सब आपका काम है, यही चीजें तो इंसान के।
एक मिनट रुको, मैं भी चलता हूँ।
कहाँ होगे भाई, इफ्तार का वक्त है, मैं बस गया और
आया। क्यों तकल्लुफ कर रहे हो, अकेले क्या कर पाओगे, कोई मदद वगैरह की जरूरत होगी ना?
तकल्लुफ भाई, मेरे ख्याल में इसको पैसे वैसे की जरूरत पड़ गई होगी जो फोन पर नहीं कह पाया, देखता हूँ कुछ दे पाऊंगा, सवाब भी मिलेगा। आप तशरीफ रखिए।
कहिए तो मैं आ जाऊँ।
तुम कहाँ होगे मेरे बेटे, ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए है और तुम ही मेरे साथ चलना चाहते हो? नहीं बेटा, तुम यहीं रहो, मैं चलता हूँ। अम्मी जान, मैं बस फौरन आता हूँ। गया और आया।
जाइए मनु चेहरमिया, इंशाल्लाह आपके दोस्तों को भी कुछ ना हुआ और सब ठीक।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
मनु चेहर, जल्दी आना, बुरी बात है।
क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ जा रहा हूँ भाई, बस पहली चाय पीते पीते आ जाऊँगा दो सेकेंड में।
ठीक, अपना कोट तो लेते जाओ।
क्या दिमाग है, खुदा करे ठीक ठाक हो।
खुदा की लानत हो तुम पर सरमस्त। बिलाखिर कागजात के पीछे आ ही गया और तुम तो बगैर इजाजत के कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई खुदा के वास्ते इजाजत वगैरह छोड़ो, कुछ तो करो। फानूस ही उस पर गिर पड़े, कम से कम कागजात को छोड़ दें। हंसना तो खूब आता है तुम्हें, इसके लिए तो इजाजत की जरूरत नहीं है ना।
बस यही है।
बिलाखिर अपना काम कर दिया, तुमने भी तो कुछ नहीं किया, सिर्फ यहां मुझे आजाद देने के लिए आए हो।
देखो तुमने प्लास्टर भी किया है, क्या समझे थे हीरो? तो देखो ये देखो, अरे 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 वाह भाई, एक और बीवी भी थी। हाजी साहब आपने भी क्या खजाना छोड़ा है। मैंने कहा तो आफाक आफाक चिल्लाते रहते थे, याद करते रहते थे और यहाँ दूसरी शादी भी करके बैठे थे। वाकई तुमको नहीं पहचान सका मैं हाजी, अपनी ये टेक्निकें मुझे भी सिखा दी होती तो क्या बुरा होता। इतने साल दो बीवी रखी और कोई नहीं समझ सका मोहतरमा शरीफा सुल्तानी। अच्छा रिश्तेदार भी थी इसीलिए इतनी बख्शिशें की जा।
खुदा तुम्हें गारत करे, वापस रखो इसे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सादिक भैया
अस्सलाम लिखना चाहिए था, सारमस मियां सलाम अलैकुम।
जिस वक्त तुम ये खत पढ़ रहे होगे मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी होगी। अगर इस खत में रखे हुए आईडी कार्ड देखोगे तो समझ जाओगे कि शरीफा मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत की हामिल थी।
यही हराम खाने का नतीजा।
मैं बातें बनाना नहीं चाहता क्योंकि मेरी गलती को और उजागर करेंगी। सिर्फ तुमसे मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ और मेरी वसीयतनामे में लिखी हुई बात को शरीफा तक पहुँचा देना। उसे ढूँढना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर उसे ढूँढ कर उस तक उसका हक पहुँचा दोगे तो मुझे, जो नहीं जानता कि कब्र में फंसा हुआ हूँ या बरज़ख़ की वादियों में परेशान हूँ, सुकून दिला दोगे। कोशिश करना कोई भी, खास तौर से आफाक, शरीफा के बारे में कुछ ना जान सके। लेकिन अगर अदाए हक उसे इत्तला दिए बगैर मुमकिन ना हो तो मेरी आफाक से ज़रूर कहना कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुआफ़ी का तलबगार। अगर यह काम किया तो उसे बर्दाश्त करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन यह बात सिर्फ तुम जान लोगे, यह काम मैंने सिर्फ इसलिए किया कि तुम और तुम्हारे वालिद रुसवाना हो, बस।
हाँ बिल्कुल, सिर्फ बस तुम मकरूज नहीं रहना चाह रहे थे, बस। तुमने कहा और मैंने भी तुम्हारी बात की यकीन कर लिया। ऐसे मामलों में मेरे भाई मैं तुम सबका बाप हूँ, तुमसे ज्यादा माहिर हूँ, मुझे ये काम अच्छी तरह आते हैं। तुम्हारा दिल कहीं और लगा था और सामने वाले को मायूस नहीं करना चाह रहे थे। और मोहतरमा भी आपको बहुत मानती होंगी, बहुत ज्यादा, इतना कि 200 करोड़ तुमान पागल हो जाएगी जनाब। मुझे ये समझ में नहीं आता ये सब अपने साले को क्यों लिखा है। कोई अक्लमंद आदमी अपने साले से कहता है कि तुम्हारी बहन के अलावा भी मेरी और एक बीवी है, समझ में नहीं आता, और वो भी अपनी जायदाद उठाकर उस औरत के हवाले कर।
अरे हरामखोर बेगैरत, तुम्हें मेरी हालत का क्या अंदाजा अंदाजा है?
अच्छा, ये भी तुम्हारी चालाकी थी, अच्छी तरह जानते थे कि क्या और किसे लिखना चाहिए, सादिक को, एक मुकद्दस चकद्दस आदमी को, ताकि वो शराफत दिखाकर वो पैसे अदा कर दे, चुपचाप से दे दे। मेरा कितना दिल चाह रहा है कि इस खत को तुम्हारी आफाक को दिखा देता, ताकि वो फिर जान जाए कि उसका शौहर कैसा जानवर था, तब उसकी सूरत देखने के लायक होगी कि क्या है। लेकिन अफसोस के 200 करोड़ की बात है, वरना ऐसा काम करता कि तुम्हारा इस्तकबाल लानोतान से होता, आखिरत में तुमको गालियां दी जाती।
सरमस्त, तुम्हें मां की कसम इसे आग ना लगाओ, मेरे खुदा मेरी मदद करके इसे आग ना लगा सके।
ऐसा नहीं करूंगा, हैफ है, ये तो तुम्हारी खयानतों का सबूत है और जिंदगी भर के फरेब की निशानी है, कभी काम भी आ सकती है, और शायद इत्तफाकी तौर पर आफाक तक ये खत पोस्ट कर दिया जाए, मुझे यकीन है कि फौरन ही तुम्हारी भी अपने आशिक बेवफा को मारने की इजाजत दे देगी।
कामयाब साहब, एक जरूरत पेश आई है जिसकी वजह से हाजी का वसीयतनामा फौरन खोलना पड़ेगा।
अरे वही आप वाला वसीयतनामा ना, वही जो हाजी की तरफ से लिखा गया था।
जी अलबत्ता, आपको भी आपका हिस्सा दे चुका हूँ।
सरमद साहब, वो हिस्सा जो ये काम के लिए मुझे मिलने वाला है, आपके मिलने वाले हिस्से से बहुत कम है।
मेरी बात सुनो एक्सपायर वकील, हाजिया कल्ब देने के लिए तैयार नहीं है, वजह मालूम है, चूँकि वो समझते हैं कि हाजी मकरूज मकरूज है और सब कुछ देख रहे हैं।
ये तो ठीक कहा, नमाज खाने में जो कागजात थे उसे ले आए।
हाँ।
ये हाजी किसके मकरूज थे?
बताऊंगा। देखो कामयाब साहब, आधे एक घंटे के बाद खुसरो को फोन करना और मैयत के बारे में पूछना, इस तरह से उसको भी याद आ जाएगा कि वसीयतनामे की बात उनसे करना चाहिए, घर वालों को बताना चाहिए।
यानी अब तक जिक्र ही नहीं किया था।
मुनासिब ना होता ये बात मैं छेड़ता, चूंकि ये वसीयतनामा मेरे फायदे में है तो मुमकिन था वो लोग शक को गुमान में पड़ जाते, खुसरो को भी याद नहीं होगा कि बात कहना भी चाहिए थी या नहीं।
ठीक है, मैं फोन करता हूँ। अच्छा, वसीयतनामा खोलना जैसे बता चुका हूँ कानूनी तौर पर मना है, मैं इंतकाल से पहले एक काम नहीं कर सकता।
ये कानूनी तौर पर मना होना भी बाकी गैर कानूनी कामों की तरह पैसे वाला काम हो सकता है। कामयाब साहब,
जरा खुल के कहो, समझा नहीं मैं।
मतलब ये है कि जब खुसरो तुम्हारे पास आए तो तुम यही सारी बातें करना कि नहीं हो सकता और कानूनी तौर पर मना है और नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, जब तुम ये सब बातें करोगे तो तुमको रिश्वत देने पर तैयार हो जाएगा, और जब रिश्वत देने पर तैयार हो जाए तो फिर जितनी रुकावटें हटा देना सामने से।
अच्छा ये बताओ कि तुम इतना मुसिर क्यों हो कि वसीयतनामा इतनी जल्दी खोल दिया जाए?
पहली बात तो ये है कि फैक्ट्री के मालिक का सबको पता चल जाए, और उनके एक तिहाई हिस्से का मालिक मैं हूँ। दूसरी बात यह है कि उनकी बीवी को भी पता चल जाए कि हाजी किसी के मकरूज वकरूज नहीं है, और जल्दी मशीनें हटाने की इजाज़त दे दें, और हाजी से भी हमको फुर्सत मिले और मुझे भी सुकून मिल जाए। अब समझ गए, समझ गए ना? खुदा हाफिज़।
अरे क्या कर रही हो बेटा?
बेटा बर्तन बहुत ज्यादा हैं, तुम हटो मैं धो देती
हूँ। नहीं फूफी जान कोई बात नहीं, मुझे दे, अरे छोड़िए।
अच्छा कम से कम दस्ताना ही पहन लेती।
अब तो आदत हो गई है।
कहो तो मैं धो देता हूँ।
इन हाथों से
क्यों नहीं, जब तक शादी नहीं हुई है तो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि टूटे हुए हाथों से भी। लेकिन जैसे ही निकाह हुआ और हाँ सुन लिया, सारे काम उनके बीवी के हो गए। बेटा एक फोन जरा अपने बाप को करना, पूछो क्या हुआ है, कोई मदद की जरूरत?
फोन किया था, बिजी था।
ठीक है तब तो आते ही होंगे। अच्छा बेटा यहाँ खड़े मत रहो, अभी मेहताज आएगी तो बिला वजह गुस्सा करेगी, रात हमारी हराम कर देगी।
मेरे ख्याल में अब अफशीन के बारे में मुझे भी इत्तला होनी चाहिए।
कम से कम अपने आप को गिराने से पहले ही पूछ लिया होता।
मैं मंगनी की रात के अगले दिन कॉलेज आया था ताकि तुमसे बात करूं, लेकिन एक ऐसी चीज़ देखी जो मुझे पसंद नहीं आई। शायद मुझसे आगे ही रहते हैं, है ना?
मंगनी की रात? यही ना, तुम खुद से ही फालतू चीज़ें सोचने लगते हो। मुझे उस रात अफशीन के आने की कोई खबर ही नहीं थी, और अगले दिन भी यूं ही कॉलेज आ गया था।
अच्छा तो आप उससे शादी करना नहीं चाहती है ना? यानी आपका जवाब नहीं है ना?
उनका जवाब तो नहीं है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हाँ कह दूं।
अलबत्ता मुझे आपके जवाब का इंतजार नहीं है, बस आपसे थोड़ा मौका चाहिए था ताकि अपनी काबिलियत साबित कर सकूं।
एक बात जानते हो सासा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। जब से तुमने अपने को गिराया है मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती।
वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी मैं मानता हूँ, लेकिन एक फ़ायदा तो ज़रूर था कि मेरी चाहत का अंदाज़ा तुम्हें हो गया होगा, और ये कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो।
जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तुम समझते हो मोहब्बत ही सब कुछ है। मैं नहीं कहती कि मेरे लिए मोहब्बत अहम नहीं, लेकिन काफ़ी नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ कि जिस पर भरोसा कर सकूँ। ऐसे मर्द की ज़रूरत है जो मुश्किलों के सामने पहाड़ के जैसा मजबूत हो। नहीं है कि अगर कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे खिड़कियाँ बंद करनी पड़ जाएँ कि कहीं जनाब अपने को गिरा न दें।
ठीक कहती हो, मैं एक बार और कह चुका हूँ, आखिरी दिन भी नाना जान ने यही बातें की थी। मुझे साबित करना पड़ेगा कि तुम्हारे लायक हूँ। हाँ मैं अभी लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक और मौके की ज़रूरत है।
बुरी बात है सासान, अपने मेहमानों को छोड़कर किचन में बैठे हो। उधर आपके वालिद नामदार जो मेहमानों को छोड़कर गायब हो गए हैं, और इधर आप इफ्तार कराने के कुछ आदाब होते हैं।
जी
बुरी बात है कि मैं तुम्हारा ख्याल करती रहूं बच्चों की तरह।
हाँ बुरी बात तो है।
सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम, माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, देर होने की वजह से शर्मिंदा हूँ। अगर सवाब का काम ना होता तो न जाता।
अच्छा तो हुआ क्या, वो लोग ठीक तो थे ना?
असल में अम्मी जान उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल खराब हो गई। बेचारों के पास गाड़ी उठवाने का पैसा वैसा भी नहीं था। अच्छा ही हुआ कि मैं पहुंच गया और दे दिलाकर मैंने ख़त्म कर दिया, निपटा दिया मसला, हल हो गया एक तरह से। सलाम अलैकुम मेहता साहिबा। ओफ माफ कीजिएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप लोग इतने दिन के बाद आए लेकिन और ये सूरत हाल हो गई। माफ कीजिएगा, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ।
खुदा का शुक्र है कि वो लोग ठीक हैं, आपने भी एक काम अच्छा कर दिया। अगर हाजी के एक्सीडेंट के वक्त भी कोई वहां पहुंच जाता तो शायद।
इत्तेफाक से उनकी गाड़ी भी हाजी साहब की तरह पुरानी थी। मैंने एक दिन पहले हाजी साहब से कहा था कि हाजी इस गाड़ी को बेच दीजिए। मुझसे कहते थे हमेशा से यही गाड़ी मेरे साथ रही, इतनी आसानी से मेरा साथ नहीं छोड़ेगी किसी भी हालत में। मैंने सोचा कि जाकर कहूं कि आपकी सौतन आ गई है, यानी आपको बताना चाह रहा था।
वो ड्राइवर जिसने हाजी साहब को मारा था पकड़ा गया कि नहीं?
नहीं भाई, वो कंबख्त मार के भाग गया।
किस तरह दो खानदानों को सोगवार बना दिया।
अरे बाबा, आपकी कोट इतनी गंदी क्यों है?
कुछ नहीं बेटा, उनकी गाड़ी डैमेज और गंदी थी, इसी पर टेक लगाया होगा शायद मैंने, इसीलिए। मैं चलता हूँ, इतनी देर तक गाड़ी को धक्का दिया है, चलूँ हाथ धो लूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। उफ़, ओ कमर। ये हुई ना बात। ये बात तो दिमाग में ही नहीं आई थी। दो दोस्तों की तरह।
मनोज है?
डरा दिया।
कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो? इस फ्रेम से क्या दुश्मनी है?
गिरा हुआ था, टाइट कर रहा था।
जूता पहने बेड पर चढ़े हो?
जूता साफ है।
अरे ये लोग जा रहे हैं, जरा नीचे आओ।
आया भाई, आ गया, जाओ दाता हूँ, शोर शराबा मत करो।
एक तो मेहमानों को छोड़कर चले गए थे और इधर मेरे लिए फ्रेम सेट कर रहे हो, वाकई तुम भी ना।
आ गया आ गया, हम कुछ भी करें सारी दुनिया के मकरूज ही रहेंगे। चलो अच्छा,
अगर तुम्हारे रिश्तेदार होते तो भी यही करते?
तुम भी ना, अगर मेरे रिश्तेदार होते तो आने भी ना देता।
अफसोस के उनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई है। बहरहाल आपने बहुत जहमत की, बहुत शुक्रिया। आप मुतमईन रहें कि आपको जरूर इसकी इत्तला दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
लीजिए खाइए ना।
अम्मी जान, असल में मैंने एक बात आपसे छुपाई, मैंने और मनुचैर ने।
मैंने क्या छुपाया?
हमें मालूम था कि बाबा जान का कोई वसीयतनामा
दिया है। वसीयतनामा?
अरे हाँ, ठीक कहा, हम तो भूल ही गए थे।
मनुचेर, तुम भी जानते थे तो मुझे कुछ बताया क्यों नहीं?
मैं क्या कहता आखिर, इन तीनों तो आपके सासान की गलतियों को सुधारने में लगा था। एक तरफ हॉस्पिटल जाओ, फिर दवाखाने जाओ, उधर से जाओ, इधर जाओ, ये जाकर फला चीज ले आओ, वहां जाकर पैसे ले आओ। तो मुझे तो माफ करें भाई, लेकिन आपने क्यों नहीं कहा?
आपको कहां से पता चला, यानी वसीयतनामा कहाँ मिला?
असल में
मिला नहीं, गालिबन बाबा जान ने एक वसीयतनामा तैयार करके अपने वकील के पास रखवाया था।
वकील के पास? उनका वकील कौन है जिसे मैं नहीं जानती?
कोई आदमी है कामयाब नाम का, अलबत्ता मैं उसे जानता हूँ। बाबा जान के साबिक वकील थे ये, 2 साल पहले। लेकिन पिछले 2 साल से हाजी के तमाम उमूर और काम मैं खुद देख रहा था, सब मेरी निगरानी में। 2-3 साल पहले जब वो वकील थे तो कुछ लिखकर उनके हवाले कर चुके थे जिसकी खबर हमें नहीं थी।
तो क्यों हाजी ने अब तक वसीयतनामे के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा?
वो तो हम भी नहीं जानते, यही बात तो हम सबके लिए अजीब है।
मैं समझता हूँ कि ये ताकि हम ज्यादा पूछताछ ना करें और ये ना जाने कि इस वसीयतनामे में क्या लिखा है। हाजी ने लिखा और उसके हवाले कर दिया, हमसे भी छिपा रखा था।
तो शायद उनकी रूह को उसी की परेशानी रही हो जो मामू और सासान से बात करना चाहते थे।
शाबाश, यही बात यकीनन वो कहना चाह रहे होंगे कि वसीयतनामा छोड़कर गए हैं। शाबाश।
मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ कह रहे थे सादिक मामू से कहना।
तुम क्या नहीं जानते, यही कहना चाह रहे होंगे और क्या, यही कहना चाह रहे होंगे।
आपको कब पता चला कि उनका कोई वसीयतनामा है?
एक्सीडेंट के एक दो दिन बाद।
तो ये नहीं कहना चाह रहे होंगे?
क्यों?
क्योंकि दादा जान की रूह ने आप और बाबा जान की तिलक के बाद सादिक मामू और सासान से बात की है, जरूर कुछ और ही कहना चाह रहा हूँ।
हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी मंतिकी बात।
वो कर्ज जो हाजी तवसुली बता रहे थे शायद इसी वसीयतनामे में लिखा हो।
ये हुई ना बात, यही होगा जो आपने फरमाया। अहसन, वो शायद इस जरिए कहना चाह रहे होंगे कि हम जाकर वसीयतनामे को खोल सकें और कर्ज और दें से आगाह होकर उसे अदा कर दें।
चलो इसी वक्त चलते हैं वकील के पास।
क्यों मम्मी जान?
इसलिए कि तुम्हारे बाप की वसीयत वो खोलें और देखें कि उस कर्ज के बारे में कुछ लिखा है या नहीं।
ये हो नहीं सकता अम्मी जान, पिछली बार जब हम उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक बाबा जान जिंदा हैं तो वसीयतनामा नहीं खोला जा सकता कानूनी लिहाज से।
जी अम्मी जान, खुसरो साहब ठीक कहते हैं, वो साहब बड़े ईमानदार हैं चुके ना, इसीलिए नहीं माने, कोई गैर कानूनी काम नहीं करते किसी भी हालत।
हम चलते हैं, मैं बात करके देखूं।
इस वक्त तो कोई ऑफिस में नहीं मिलेगा, सुबह मैं खुद उससे बात करने जाऊंगा, अगर राजी हो गए तो आपको भी लेते चलेंगे।
जी ये बेहतर है।
खुसरो मियां, मेरा बेटा, उस वसीयतनामे को जल्द अज जल्द खोल के देखो कि तुम्हारे बाप के कर्ज और दैन की इत्तला मिल जाए।
अम्मी मैं आप पर कुर्बान जाऊं, मैंने तो अर्ज किया कि सर आंखों पर, सुबह होने तो दीजिए, मैं कामयार साहब के पास जाऊंगा और उनको राजी करूंगा, वादा करता हूँ।
खुसरो साहब ने वादा कर लिया, खुसरो साहब ने वादा कर लिया, फिर सब हल है। मुझे कुछ खाने को दो, मैं भूख से मर रहा हूँ भाई।
तुमने वादा किया है खुसरो।